अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनका देश नस्ल भेद इतिहास से पूरी तरह से उबर नहीं पाया है और यहां अब भी उनके लिए नीग्रो शब्द का उपयोग किया जाता है। एक इंटरव्यू में ओबामा ने अमरीकी राज्य साउथ कैरोलिना के चार्ल्सटन शहर में ऐतिहासिक ब्लैक चर्च पर पिछले हफ्ते बुधवार को हुए नस्ली हमले का जिक्र किया। इस हमले में एक श्वेत पुरुष ने चर्च के 9 अफ्रीकी अमरीकी सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस बीच साउथ कैरोलिना राज्य की गवर्नर निकी हेली ने राज्य की राजधानी कोलंबिया से संघीय झंडे को हटाने को कहा है। चर्च में हुई गोलीबारी में मरने वालों में साउथ कैरोलिना की सीनेटर क्लेमेंटा पिकनी भी शामिल थीं। राज्य के एक रिपब्लिकन सदस्य डफ ब्रैनन का कहना था कि संघीय झंडा, जो कि श्वेत लोगों की सर्वोच्चता को दिखाता है, उसे हटाने संबंधी एक विधेयक तैयार किया जा चुका है। ग्रीस सरकार का कहना है कि वो कुछ नए कर लगाकर और खर्चों में कटौती करके अगले 2 साल में करीब 8 अरब यूरो जुटाने की कोशिश करेगी। ऐसा करके ग्रीस सरकार करदाताओं को भरोसा दिलाने की कोशिश करेगी। ग्रीस के कर्ज संकट के समाधान के लिए ब्रसेल्स में यूरोजोन के वित्त मंत्रियों की आपात बैठक के बाद ग्रीस के वित्त मंत्री ने सरकार की नई योजना की जानकारी दी है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास का कहना था कि अब गेंद यूरोप के पाले में है। हम एक व्यापक और स्थायी हल चाहते हैं, साथ ही एक मजबूत पैकेज चाहते हैं ताकि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सके। हमने अपनी ओर से कोशिश कर ली है, अब आगे क्या करना है ये यूरोपीय नेताओं के जिम्मे है। ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में एक मछली बाजार में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट के तुरंत बाद एक अन्य महिला ने भी खुद को उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। बाद में वो एक मस्जिद की ओर भागी, जहां विस्फोटकों के फटने से उसकी मौत हो गई। टेलीविजन चैनल अल जजीरा के पत्रकार ने मिस्र की ओर से की गई उनके प्रत्यर्पण की अपील खारिज करने पर जर्मनी की अदालत को धन्यवाद दिया है। बर्लिन में पत्रकार अहमद मंसूर ने कहा कि जर्मनी के जजों ने यह दिखा दिया है कि मिस्र के जजों के विपरीत वे स्वतंत्र लोग हैं। मिस्र ने मंसूर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने साल 2011 में होस्नी मुबारक के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान एक वकील को प्रताड़ित किया था। अहमद मंसूर अल जजीरा चैनल के काफी प्रतिष्ठित एंकरों में से हैं। BBC समाचार।
नमस्कार भारत, BBC रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन, bbchindi.com और मोबाइल पर भी। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माना है कि उनका देश अब भी नस्लवाद से उबरा नहीं है। एक रेडियो इंटरव्यू में राष्ट्रपति ओबामा ने ये बात कही। हाल ही में एक अमरीकी युवा ने दक्षिणी कैरोलिना की एक चर्च में अंधाधुंध गोली चलाकर 9 अफ्रीकी अमरीकी लोगों की हत्या कर दी थी। दक्षिणी कैरोलिना में लोगों में काफी गुस्सा है। BBC संवाददाताओं की रिपोर्ट का सार सुनिए समीर आत्मज मिश्र से।
5 दिन पहले अमरीकी राज्य साउथ कैरोलिना के एक चर्च में एक अमरीकी युवा ने अंधाधुंध गोलीबारी करके 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। मरने वालों में सभी अफ्रीकी मूल के अमरीकी लोग थे। अमरीका में नस्लभेदी सोच से प्रभावित ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया है कि अमरीका अभी भी नस्लवाद से उबर नहीं पाया है। इस दौरान उन्होंने निगर यानी हबशी शब्द का भी इस्तेमाल किया, जो कि काले लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। नस्लवाद का निदान हम अभी तक नहीं कर पाए हैं। ये सिर्फ खुल्लम खुल्ला भेदभाव का मसला नहीं है। समाज रातों रात उन सब को नहीं मिटा पाता है जो पिछले 200-300 सालों में हुआ हो। काले लोगों पर दास प्रथा वाले अमरीकी इतिहास की लंबी छाया है, जो अब भी हमारे DNA का हिस्सा है और जो लगातार आगे बढ़ रहा है। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के शब्द। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति ने ये माना कि नस्ल को लेकर अमरीका में हालात उनके बचपन की तुलना में बेहतर हुए हैं। पिछले दिनों साउथ कैरोलिना के नॉर्थ चार्ल्सटन शहर के चर्च में हुई गोलीबारी के सिलसिले में पुलिस ने डिलैन नाम के 21 साल के एक गोरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। चर्च में गोलीबारी उस समय की गई थी जब वहां एक सभा हो रही थी। गोलीबारी के बाद साउथ कैरोलिना में लोगों में काफी रोष है। यहां तक कि लोग शहर से संघीय झंडे को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। साउथ कैरोलिना की भारतीय मूल की गवर्नर निकी हेली भी इसका समर्थन करती हैं। एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा,
15 years ago, after much contentious debate, South Carolina came together in a bipartisan way to move the flag from atop the Capitol dome.
15 साल पहले काफी बहस के बाद साउथ कैरोलिना की राजधानी में दोनों झंडे साथ लगाने पर सहमति बनी थी। आज हम अपने राज्य की एकता के लिए इस झंडे को राजधानी से बाहर करने को मजबूर हो रहे हैं। साउथ कैरोलिना की गवर्नर निकी हेली के शब्द। पुलिस का मानना है कि चर्च में गोलीबारी करने वाला शख्स नस्लभेदी सोच से प्रभावित था। नॉर्थ चार्ल्सटन में ही 2 महीने पहले एक गोरे पुलिसकर्मी ने अफ्रीकी मूल के अमरीकी नागरिक की हत्या कर दी थी, जिसका काफी विरोध हुआ था।
रिपोर्ट सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। अमरीका सिर्फ आर्थिक और सामरिक मामलों में ही नहीं, कई और पैमानों पर भी दुनिया का अगुआ है और समानता की बात करता है। तो फिर उस समाज में नस्लवाद का जहर क्यों मौजूद है? यही सवाल मैंने पूछा न्यूयॉर्क की पेस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश कैलूरी से।
एक तो हिस्ट्री है, 200 साल की हिस्ट्री है, स्लेवरी की हिस्ट्री है, और जो प्रेजिडेंट ही कहे थे कि टाइम लगता है इसके लिए, 200-300 साल लगता है कि एक शब्द यू ही बैन नहीं हो जाता है सोसाइटी से। और एक तो है कि अभी जो भारत में कास्ट सिस्टम है और अमेरिका में रेस सिस्टम है, तो वही है डिफरेंस। और अभी रेसिज्म अमेरिका से इरेडिकेट होने की तो समझना तो अभी तो नहीं है, टाइम तो लगेगा, बट इक्वालिटी तो टाइम लगेगा। आई मीन दैट इज माय टेक।
राष्ट्रपति ओबामा ने कई बार खुद भी माना है कि वो भी नस्लवाद के शिकार रहे हैं, और जब उनका कार्यकाल शुरू हुआ तभी से ये बात थी कि वो इसके लिए कुछ काम करेंगे कि ताकि इसको दूर किया जा सके। इन बीते सालों में क्या कुछ ऐसा नजर आया आपको कि इसे दूर करने के लिए कोशिश की गई हो?
ओबामा जब प्रेसिडेंट बने की थी पूर्ण को अमेरिका में तो ये होप था कि भाई हम लोग अभी नस्लवाद के बाद जो सोसाइटी बनेगी, अभी एक अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट बन गया तो उसके वजह से तो अभी एक पोस्ट रेशियल सोसाइटी होगी हमारी। लेकिन 6-7 साल में तो आप देखिए इंसिडेंट हुई पर्सनली ओबामा के साथ या बाहर, एक्चुअली वर्स हो गया रेस रिलेशंस का, तो वर्स हो गया। और प्रेसिडेंट ही कहते कि अब तक तो उनके टेन्योर में 12 या 13 मास शूटिंग्स के जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिए उनके टेन्योर में 7 साल में प्रेसिडेंट ने ओपनली व्हाइट हाउस में एड्रेस किए थे। तो एक तो रेस रिलेशंस का एक फ्रस्ट्रेशन है कि प्रेसिडेंट ही कुडन्ट डू मच अबाउट इट, और दूसरा जो है रिलेटेड जो है इसका पर्टिकुलर इंसिडेंट जो अभी चल रहा है वो एक गन्स के बारे में, गन लॉस के बारे में, और उसके बारे में भी प्रेसिडेंट अपने जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते रहे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ इसके बारे में, लेकिन हो नहीं पा रहा है।
डे टू डे जो लाइफ है उसमें भी क्या इस तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हाँ। इस तरह का अनुभव आप निजी आधार पर कुछ बता सकते हैं? आप
मुझे भी हुआ था निजी इस पे हुआ था मुझे बहुत साल पहले, रोड पे चलते हुए जो चीखा लगाए मुझे रेसिज्म के बारे में या जो भी है। लेकिन जब आप अफ्रीकन अमेरिकन होते हैं ये कंट्री में तो आपको ये जो इंसिडेंट है आपको डेली एवरी डे आपको तो बेयर करना पड़ता है, और वो सही बात है। और जो अभी इंडिया में जो दलित है वैसी है, अब उनका वही सिस्टम चलता है, यहाँ भी रेसिज्म का वही सिस्टम है, कास्टिज्म जो इंडिया में वही रेसिज्म का सिस्टम यहाँ है। हमारा तो अलग है, आई मीन डिपेंड्स ऑन आप कौन सी एरिया में रहते हैं, लेकिन स्ट्रक्चरली जो रेसिज्म का है वो जो अम्ब्रेला है वो तो सही है यहाँ अमेरिका में, तो इट हैज बीन देयर एंड इट विल बी देयर फॉर अ व्हाइल।
न्यूयॉर्क की पेस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश कैलूरी इस बात का विश्लेषण कर रहे थे कि अमेरिका में नस्लवाद कितना है और क्या है या नहीं है। तो अब हम रुख करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर और आपके साथ हूं मैं निखिल रंजन। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भाजपा आलाकमान की ओर से क्लीन चिट दिए जाने के बाद कांग्रेस ने वसुंधरा और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को एक बार फिर आड़े हाथों लिया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने वो कानून गिनाए हैं जिनका वसुंधरा और सुषमा स्वराज ने ललित मोदी के मामले में कथित तौर पर उल्लंघन किया है। एक रिपोर्ट के साथ संदीप सोनी।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। ललित मोदी विवाद में नाम आने के बाद गडकरी पार्टी के ऐसे पहले नेता हैं जो वसुंधरा राजे से मिले हैं। गडकरी ने न केवल राजे बल्कि उनके सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह को भी क्लीन चिट दी है।
वसुंधरा जी के ऊपर जो आरोप है ये बेबुनियाद है और ये आरोप में न कोई लीगलिटी है न कोई करप्शन है। जहां तक उनके बेटे के ऊपर जो आरोप किए ये पूरी तरह से बिजनेस डील है और इसलिए इस प्रकार के डील को जिस प्रकार से राजनीतिक विवादों में लाने की कोशिश की जा रही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे सुषमा जी का सवाल हो चाहे वसुंधरा जी का सवाल हो, वसुंधरा जी लीगली लॉजिकली इथिकली बिल्कुल करेक्ट है। कहीं उनका कोई गलती नहीं है, कोई करप्शन नहीं है और कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की, राजस्थान की और हमारी भारत सरकार पूरी तरह वसुंधरा जी के साथ खड़ी है।
दूसरी ओर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को क्लीन चिट देकर भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे पर लीपापोती कर रही है। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि ललित मोदी की मदद के मामले में वसुंधरा राजे और सुषमा स्वराज ने एक नहीं बल्कि पूरे 4 कानूनों का उल्लंघन किया है। जयराम रमेश ने कहा,
4 महत्वपूर्ण कानूनों का उल्लंघन हुआ है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और इंडियन पीनल कोड। विदेश मंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री की ओर से इन 4 कानूनों का उल्लंघन हुआ है ललित मोदी कांड में।
वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर एक बार फिर सवाल उठाया।
प्रधानमंत्री जी की जो चुप्पी है, जो उन्होंने चुप्पी साबित की है, उससे लगता है कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी की रेख देख में ये सब कुछ हो रहा था। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ललित मोदी जी को और प्रेजेंट प्रधानमंत्री मोदी जी के संबंध आपस में है, क्योंकि दोनों क्रिकेट के मैदान में अलग अलग पोजीशनें पिछले कई सालों से होल्ड करते आए हैं, उनके संबंध बड़े निकट के रहे हैं।
कांग्रेस के इन आरोपों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी लगातार दावा कर रही है कि उसके नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब ये बात सामने आई कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ललित मोदी को ब्रिटेन में यात्रा दस्तावेज हासिल करने में मदद की थी। IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप हैं और वे लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां इसे मानवीय आधार पर मदद का मामला बताती रही है, वहीं कांग्रेस इस पूरे मामले में कई पेंच होने का दावा करती है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस पूरे मामले में कुछ नहीं कहे जाने से कांग्रेस उन्हें भी आड़े हाथों ले रही है।
राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को BJP आलाकमान की ओर से क्लीन चिट मिली है। रिपोर्ट सुना रहे थे संदीप सोनी। इस साल सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। माना जा रहा है कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले NDA और सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के बीच होगा। नेतृत्व का सवाल इन दोनों गठबंधनों को परेशान करता रहा है। पहले सत्तारूढ़ गठबंधन तो अब NDA में इस सवाल पर मतभेद दिखाई दे रहे हैं। NDA में जारी खींचतान पर सुनिए पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
नेतृत्व के सवाल पर अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई वाले NDA के मतभेद सामने आने लगे हैं। बीते सप्ताह इस सवाल पर भाजपा में चल रहा उठापटक सतह पर आया था, अब इसे उपेंद्र कुशवाहा के बयान ने और आगे बढ़ाया। उपेंद्र कुशवाहा NDA के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने सोमवार को दिल्ली में कहा कि भाजपा में जारी टकराव को देखते हुए रालोसपा ने उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुनकर एक रास्ता दिखाया है। दरअसल रालोसपा की कार्यकारिणी ने रविवार को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसके मुताबिक यदि NDA उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाती है तो यह गठबंधन के लिए अच्छा रहेगा। साथ ही पार्टी ने विधानसभा की 67 सीटों पर अपनी दावेदारी भी पेश की थी। क्या यह प्रस्ताव ज्यादा सीटों के लिए भाजपा पर दबाव बनाने के लिए पेश किया गया? इसके जवाब में रालोसपा के प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष ललन पासवान कहते हैं,
हमने प्रपोजल किया है, हमने अपनी बात रखी है कि हमारे दल का उम्मीदवार है, हमने NDA से आग्रह किया है और आग्रह करना कोई अपराध थोड़े है। हमने बतासा के लिए मंदिर तोड़ने की बात नहीं की है और हमारा कोई दबाव नहीं है। NDA जब बैठ के जो फैसला करेगा हमें वो मान्य है, लेकिन हमारे दल का नेता हमारा मुख्यमंत्री तो निश्चित तौर से उपेंद्र कुशवाहा है और भविष्य में भी रहेंगे।
भाजपा की ओर से रालोसपा के प्रस्ताव पर बहुत सदी हुई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे ने इसे रालोसपा का लोकतांत्रिक अधिकार करार दिया है।
लोकतंत्र में सबको अपना विचार रखने का अधिकार है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने भी अपना सुझाव और विचार रखा है। एनडीए में जब इस पे चर्चा होगा तो उस समय चर्चा होगा, अभी तो इस चर्चा का समय ही नहीं।
वहीं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने एनडीए में नेतृत्व के सवाल पर लगी आग को हवा दी है। उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा में सीएम बनने के गुण हैं, वे परिपक्व हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राजद जदयू गठबंधन के बाद सूबे की राजनीतिक तस्वीर बदली है। एनडीए में शामिल छोटे दलों को अब यह एहसास हो गया है कि वे भाजपा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वे इसकी कीमत वसूलने की तैयारी में हैं। वरिष्ठ पत्रकार रजनीश उपाध्याय बताते हैं,
राजद जदयू गठबंधन के बाद बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति तैयार हुई है उसने भाजपा के सामने एक तरह की चुनौती पेश की है। तो ये जो सीएम पद की दावेदारी को लेकर के जो आवाजें उठ रही हैं, उसको इसी चुनौती और दबाव के रिफ्लेक्शन के बतौर देखने की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा एक ऐसे सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसकी बिहार की राजनीति पर पकड़ है। वो घटक दल है एनडीए का, तो अभी जितने घटक दल है वो बार्गेनिंग की स्थिति में है एनडीए के।
घटक दलों के आमने सामने आने से बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए के दरार उभरने लगे हैं। माना जा रहा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे भाजपा पर सहयोगी दलों का दबाव भी बढ़ता जाएगा। मनीष शांडिल्य, पटना।
विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने करीब 60 किलो सोना पकड़ा है। अधिकारियों का दावा है कि यह सोना मलेशिया से भारत तस्करी करके लाया जा रहा था। इस सोने के साथ 57 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं विशाखापट्टनम से स्थानीय पत्रकार धनंजय, उनसे बात की हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र ने।
विशाखापट्टनम एयरपोर्ट जो हवाई अड्डा है उसमें 64 किलो का सोना पकड़ा गया, जो जहां से मलेशिया और सिंगापुर से लाया जा रहा था। इस सोने को लगभग 57 मेंबर्स को डीआरआई डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स ने पकड़ा है। इनके पास डीवीडी प्लेयर और माइक्रोवेव ओवन में रखा गया सोने के बिस्कुट इनके पास मिले और ये सभी लोग तमिलनाडु के माने जाते थे और इन सभी को पूछताछ किया जा रहा है और डीआरआई और कस्टम्स के हवाले ये लोग हैं अभी।
तो धनंजय, ये लोग कौन है? ये व्यापार करने वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं? किस लिए वहाँ मलेशिया गए हुए थे, सिंगापुर गए हुए थे, क्या पता चला है? या किसी गिरोह वगैरह से संबंधित हैं?
जी बिल्कुल, ये गिरोह के संबंधित हैं और इनका स्मगलिंग का मामला कहा जा रहा है और जो डीआरआई और कस्टम्स का कहना है ये स्मगलिंग किया जा रहा है। ये डीवीडी और माइक्रोवेव ओवन में रख के सोने के बिस्कुट को ये ला रहे थे और जो पक्का इन्फॉर्मेशन इनके पास डीआरआई के पास था और इनको अरेस्ट किया गया है।
ये पहली बार ऐसा हुआ है या फिर इससे पहले भी हुआ है कितने बड़ी संख्या में लोग पकड़े गए हों और इतनी बड़ी तादाद में सोने के बिस्किट जब्त किए गए हों?
बिल्कुल, इस बार बड़ी मात्रा में इन सभी लोगों को अरेस्ट किया गया है। इससे पहले भी लगभग 12 किलो सोना पकड़ा गया था विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में। ये लगभग तीनवा बार है जो इतनी बड़ी मात्रा में इतना सोने के बिस्कुट मिले और इससे पहले जो शमशाबाद जो हैदराबाद के एयरपोर्ट से ये लोग ला रहे थे जो सोना का स्मगलिंग हो रहा था और दुबई सिंगापुर मलेशिया से शमशाबाद एयरपोर्ट आते थे और तमिलनाडु और ज्यादा से ज्यादा तमिलनाडु कर्नाटका के लोग रहते थे और इस बार वहाँ कड़ी इंतजाम किया गया है, कड़ी मात्रा में वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम किया गया और चेकिंग भी हो रही थी, इसलिए इन्होंने विशाखापट्टनम का हवाई अड्डा चुना।
ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ के लोग हैं या फिर अलग अलग हैं, यानी किसी एक संगठन के लिए काम करने वाले लोग हैं? कौन लोग हैं, इनकी कुछ पहचान बताई गई है?
अभी इनकी पहचान पता नहीं है, इसका पूछताछ किया जा रहा है इनको, इन सभी को, लेकिन ये सभी अलग अलग लोग हैं जो सोना का स्मगलिंग किया जा रहा है इनके साथ और जो सभी के तमिलनाडु के रहने वाले हैं और इनका आइडेंटिटी भी अभी किया गया है और जो 57 मेंबर अरेस्ट किए गए अभी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और कस्टम्स के हवाले हैं और इनके पूछताछ भी किया जा रहा है।
विशाखापट्टनम से स्थानीय पत्रकार धनंजय बता रहे थे एयरपोर्ट पर पकड़े गए 60 किलो सोने के बारे में। नमस्कार भारत, आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ, और अब रुख करते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान के कराची शहर में अस्पताल के अधिकारियों का कहना है कि गर्मी की वजह से कम 224 लोग दम तोड़ चुके हैं। बिजली की आंख में चौली ने गर्मी से जूझ रहे लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। कराची से रियाज सुहेल की रिपोर्ट सुना रहे हैं अशोक कुमार।
पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। अस्पतालों में इमरजेंसी है, जहां लू के शिकार लोग बदहवास हालत में पहुंच रहे हैं। मरने वालों में ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं। राहत संस्था ईदी फाउंडेशन के प्रवक्ता अनवर काजमी का कहना है,
बच्चे भी हैं, बूढ़े ज्यादा हैं, कमजोर लोग ज्यादा है, हीरोइन एडिक्ट भी है, जारे के है। उनके सर पे कुछ साया तो होता नहीं है, लेकिन बहरहाल वो भी इंसान है, इसलिए दिया था कि घरों में खराब ना हो। लेकिन फौरी तो दफनाने का बंदोबस्त कोई नहीं करता है, अजीजों को इतला देना, ये करना वो करना, तो मजबूर हो गए कि ईदी में जो है वो ले आए।
मौसम विभाग के प्रवक्ता मोहम्मद रशीद का कहना है कि हाल के दिनों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, लेकिन राहत की बात यह है कि अब इसमें कमी आ रही है। उम्मीद है कि मंगलवार शाम तक मानसून के बादल कराची के आसमान पर छा जाएंगे, जिससे हल्की बारिश हो सकती है।
अरबियन सी में साउथ ऑफ कराची में एक छोटा सा लो प्रेशर एरिया बना हुआ है समंदर में, अगर उस लो प्रेशर की वजह से हमारी कराची की जो नॉर्मल विंड्स हैं वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं। हमारे यहाँ कराची में विंड अमूमन नॉर्मल जो चला करती है साउथ वेस्ट से ना, हमारे यहाँ विंड जो है ऊपर से आ रही है नॉर्थ की तरफ से, जो बहुत ही गर्म और हॉट है, और उसके हमारे टेम्परेचर राइज कर गए। जैसे ये सिस्टम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हमारी नॉर्मल विंड कराची की वापस आ जाएंगी।
इस बीच कराची के कई इलाकों में बिजली की किल्लत हो रही है। दो दिन पहले ही कुछ लोगों ने बिजली विभाग के दफ्तरों पर तोड़फोड़ भी की थी। आंकड़े बताते हैं कि कराची में सबसे अधिक तापमान 47 डिग्री सेल्सियस वर्ष 1979 में दर्ज किया गया था।
कराची की गर्मी में हलकान हैं लोग, रिपोर्ट सुना रहे थे अशोक कुमार, जो भेजी थी रियाज सुहेल ने। और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का। अखबार लेकर के स्टूडियो में आ चुके हैं समीर आत्मज मिश्र। समीर, बताइए आज अखबारों में दिल्ली के क्या कुछ छपा है, क्या कुछ कहा जा रहा है?
जी निखिल, आज के अखबारों में कई ऐसी खबरें हैं जिन्हें अलग अलग अखबारों ने प्रमुखता दी है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने दिल्ली के डॉक्टरों की, जो सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर हैं, उनकी हड़ताल की खबर को प्रमुखता से जगह दी है और लीड स्टोरी बनाया है, 18,000 डॉक्टर हड़ताल पर, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। और डॉक्टरों की हड़ताल से हिली दिल्ली, मरीज रहे परेशान, ये खबर है अमर उजाला की। और भी कई अखबारों में मैं देख रहा हूँ कि ये खबर जो है प्रमुखता से है। हालांकि इस बारे में मुख्यमंत्री ने उनकी मांगे मानने का भरोसा दिया है, बावजूद इसके हड़ताल से नहीं वापस आ रहे हैं डॉक्टर। नवभारत टाइम्स लिखता है, मरीजों के भगवान हड़ताल पर गए, सरकारी अस्पतालों में इलाज लगभग ठप हुआ। आतंकी साये में अफगानिस्तान, ये खबर है नवभारत टाइम्स की, जिसमें तस्वीरों के साथ अफगानिस्तान के संसद के बाहर हुए हमले की खबर है, जिसमें ग्राफिक्स के जरिए पूरा समझाया गया है। योग पर घमासान, बैकफुट पर केंद्र, ये खबर भी नवभारत टाइम्स की है, जिसमें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के न शामिल होने की जो बातें थी उसको इसमें बताया गया है। दूसरे अखबारों ने भी इस खबर को प्रमुखता से जगह दी है। और अगर हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें एक और खबर है कि केंद्र के स्कूलों में योग अनिवार्य, के मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 100 अंकों में से 80 अंक प्रायोगिक परीक्षा के विभिन्न के खंड में रखे जाएंगे, जिसमें छात्रों को विभिन्न आसन करने होंगे जी। और कप्तान, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं, जब से बांग्लादेश में वनडे सीरीज हारे हैं, भारतीय टीम हारी है, धोनी मुश्किल में, कप्तानी छोड़ने का दबाव बढ़ा, ये खबर अमर उजाला की है। और इसी पर हिंदुस्तान ने संपादकीय लिखा है, टीम इंडिया को ये क्या हो गया है, कीर्ति आज़ाद जो पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ टीमों में गिनी जाने वाली टीम इंडिया का बांग्लादेश जैसी टीम से श्रृंखला हार जाना चौंकाता है, लेकिन इससे ज़्यादा हैरान करने वाली बात है भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की इस्तीफे की पेशकश। दैनिक भास्कर की बात करें तो उस भास्कर ने खबर जो प्रमुखता से छापी है वो है, सरकार की सफाई प्रोटोकॉल की वजह से नहीं बुलाया उपराष्ट्रपति को। योग दिवस पर हामिद अंसारी के शामिल न होने पर राम माधव ने उठाए थे सवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं।
कल इस पर काफी कुछ कहा सुना,
गया। और ट्विटर पर
माफी भी मांगी
उन्होंने ट्विटर पर कि मुझे नहीं जानकारी थी। दैनिक भास्कर की एक और खबर है, चीन का वादा पूरा, नए रास्ते से कैलाश मानसरोवर गए 40 श्रद्धालु, नाथुला दर्रा जो दूसरा रास्ता है मानसरोवर जाने का उसको खोला गया, ये खबर है। वो
बहुत शुक्रिया समीर इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको बता दें उस खबर के बारे में जो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आ रही थी, कि कल भारत में दिन भर इस बात पर चर्चा होती रही कि क्या महेंद्र सिंह धोनी को कप्तानी से हटा देना चाहिए या उनमें अभी दमखम बचा है। बांग्लादेश के हाथों दूसरा एक दिवसीय मैच हारने के बाद धोनी ने कहा था कि वे टीम के हित में कप्तानी छोड़ने को तैयार हैं। इस मुद्दे पर और बीते दिनों एक दिवसीय मैचों में भारतीय टीम के प्रदर्शन को लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली से।
नहीं, इस्तीफा देने को क्या तैयार है, इस्तीफा तो कभी भी दे दें। यह है कि सेलेक्टर्स पे डिपेंड करता है ना, कि अगर सेलेक्टर्स की नजर में अगर वो अच्छे कप्तान नहीं है तो वो हटा देंगे। मुझे लगता नहीं सेलेक्टर इतनी जल्दी में होंगे, क्योंकि आप बनाएंगे किसको कप्तान? इसमें तो विराट कोहली भी तो फेल गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बार बार आप कप्तान बदलते जाएंगे, आप कहेंगे रोहित शर्मा को बना दो वनडे का कप्तान। धोनी में अभी भी बहुत काबिलियत है, ठीक है थोड़ा खराब समय चल रहा है, उनका फॉर्म ठीक नहीं था, एक मैच में रन किया एक मैच में नहीं किया, जो पहले फिनिश करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक कलेक्टिव फेलियर है। आपके बैट्समैन बॉलर जब क्रूशियल स्टेजेस पे नहीं करते हैं, तो आपको मानकर चलना पड़ेगा कि टीम खराब खेली, ना कि सिर्फ धोनी।
भारत में जिस तरह से क्रिकेट का जुनून है, ये सब देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से बांग्लादेश ने दोनों मैचों में भारत को हराया?
मैं तो कहूंगा क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि बांग्लादेश इतना बढ़िया खेल रहा है कि एक इतनी बड़ी टीम को जिस ढंग से शिकस्त दी है दोनों मैचेस में, पॉजिटिव तो खेले ही वो। आप देखें बॉलिंग बैटिंग हर डिपार्टमेंट में उन्होंने भारत को पीछे छोड़ दिया है।
भारतीय टीम को बांग्लादेश में एक भी अभ्यास मैच खेलने का मौका नहीं मिला, क्या ये एक वजह हो सकती है?
जी मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि आप इतने लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैच में तो अभ्यास हो ही गया आपका, टेस्ट मैच से पहले आपने जाके प्रैक्टिस की है और उससे पहले आप खेलते आ रहे हैं लगातार, आईपीएल में आप बिजी रहे। बांग्लादेश तो भारत की तरह है, उनकी विकेट पिचेस या मान लीजिए, यह है कि थोड़ा चौंकाने वाला फैक्टर यह था कि इनको शायद उम्मीद नहीं थी बांग्लादेश इतना बेहतरीन क्रिकेट खेलेगा।
क्रिकेट समीक्षक विजय लोकपल्ली बता रहे थे कि धोनी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं। और अब आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि उनका देश नस्ल भेद इतिहास से पूरी तरह उबर नहीं पाया है और यहां अब भी उनके लिए नीग्रो जैसे शब्दों का उपयोग किया जाता है। ग्रीस सरकार का कहना है कि वो कुछ नए कर लगाकर और खर्चों में कटौती करके अगले 2 साल में करीब 8 अरब यूरो जुटाने की कोशिश करेगी। नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी इलाके में एक मछली बाजार में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है, हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं। टेलीविजन चैनल अल जजीरा के पत्रकार ने मिस्र की ओर से की गई उनके प्रत्यर्पण की अपील खारिज करने पर जर्मनी की अदालत को धन्यवाद दिया है। बर्लिन में पत्रकार अहमद मंसूर ने कहा कि जर्मनी के जजों ने यह दिखा दिया है कि मिस्र के जजों के विपरीत वे स्वतंत्र लोग हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने। पूरी टीम के साथ निखिल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।